नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने हमास के साथ युद्ध कर रहे इसराइल को 14.5 अरब डॉलर की सैन्य सहायता मुहैया कराए जाने की बृहस्पतिवार को मंजूरी दी। ये मंजूरी हमास के साथ इस युद्ध में इसराइल के प्रति अमेरिका के व्यापक समर्थन को दर्शाती है, लेकिन इसके कारण सदन के नए स्पीकर माइक जॉनसन का दलगत रुख भी देखने को मिला, जो डेमोक्रेटिक पार्टी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए सीधी चुनौती बन गया है। जॉनसन ने तय नियमों से परे जाते हुए ऐसे रिपब्लिकन पैकेज की वकालत की जिसमें आपात सहायता देने के लिए अन्य सरकारी खर्चों में कमी करने की बात की गई है। इसने सदन में रिपब्लिकन पार्टी के नए रूढ़िवादी नेतृत्व को स्थापित किया, लेकिन जिस विधेयक को आमतौर पर दोनों दल का समर्थन मिलने की संभावना थी उसे लेकर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसद बट गए। बाइडेन ने कहा कि वो इस विधेयक को लेकर वीटो का इस्तेमाल करेंगे। सर्दियां शुरू होते ही वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली NCR से लेकर हरियाणा और पंजाब में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वायु प्रदूषण के कारण पड़ोसी देश पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मॉग इमरजेंसी लगा दी गई है। सरकार का ये फैसला वायु गुणवत्ता सूचकांक को लेकर लाहौर हाईकोर्ट द्वारा तुरंत स्मॉग आपातकाल लगाने आदेश के बाद आया है। इस प्रांत में 127 मिलियन आबादी रहती है। ये दुनिया के सबसे प्रदूषित इलाकों में शामिल हो गया है। पंजाब में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लाहौर हाईकोर्ट के जज शाहिद करीम ने लाहौर के आयुक्त को कड़ी फटकार लगाई थी। जज ने कहा कि स्मॉग व्यक्तिगत समस्या नहीं है, लेकिन ये हमारे बच्चों की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है। आप लाहौर के संरक्षक हैं, आपको लाहौर की स्थिति पर शर्म आनी चाहिए। बता दें कि लाहौर का AQI सोमवार को 447 तक पहुंच गया था। अमेरिका के रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को 42.5 करोड़ डॉलर की नई सैन्य सहायता देने की उम्मीद है। अमेरिकी अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि इसमें ड्रोन को मार गिराने के लिए लेजर निर्देशित युद्ध सामग्री खरीदने के लिए करीब 30 करोड़ डॉलर का दीर्घकालीन वित्त पोषण भी शामिल है। उन्होंने बताया कि यह दीर्घकालीन धन यूक्रेन सुरक्षा सहायता पहल के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा बाइडेन प्रशासन करीब 12.5 करोड़ डॉलर के हथियार और अन्य उपकरण उपलब्ध कराएगा। अधिकारियों ने बताया कि हथियारों में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स और सतह से हवा में मार करने वाली राष्ट्रीय उन्नत मिसाइल प्रणाली के साथ ही तोपों के गोले, टैंक रोधी मिसाइल, ध्वस्तीकरण उपकरण और ठंडे मौसम के लिए आवश्यक साजो सामान शामिल हैं। सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ब्रिटेन पहुंचे केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर। जब टेस्ला के CEO एलॉन मस्क से मिले तो उन्हें पता चला कि मस्क के बेटे का नाम में भी चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मस्क ने उनसे बातचीत में बताया कि उन्होंने अपने और शिवोन जेलिस के बेटे का मध्य नाम नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर चंद्रशेखर रखा है। पाकिस्तान में आम चुनाव अब 8 फरवरी को होगा। इसकी घोषणा बृहस्पतिवार को तब की गई जब चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी से मुलाकात की। इसके साथ ही नकदी संकट से जूझ रहे देश में बहुप्रतीक्षित चुनाव को लेकर अनिश्चितता समाप्त हो गई। शीर्ष चुनाव अधिकारियों और राष्ट्रपति अलवी की बैठक के बाद राष्ट्रपति भवन ने एक बयान में नई तारीख की घोषणा की। राष्ट्रपति के निर्णय से कुछ घंटे पहले चुनाव आयोग के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया था कि चुनाव 11 फरवरी को होगा। इस संबंध में राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और चुनाव निकाय के 4 सदस्यों ने आम चुनाव की तारीख पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति अलवी से मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर पर अंधाधुंध हमलों को बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने और इनसे हुई तबाही के स्तर को देखते हुए युद्ध अपराध की श्रेणी में लाया जा सकता है। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने एक बयान में कहा, जबालिया शरणार्थी शिविर पर इजरायली हवाई हमलों को बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने और इनसे हुई तबाही के स्तर को देखते हुए युद्ध अपराध की श्रेणी में लाया जा सकता है। लगातार दूसरे दिन और 24 घंटे से भी कम समय के भीतर 1 नवंबर को जबालिया शरणार्थी शिविर पर भीषण हवाई हमले हुए, जिनमें कथित तौर पर कई आवासीय इमारतें नष्ट हो गईं और दर्जनों लोग मारे गए। इससे पहले 31 अक्टूबर को ए नुसीरत शिविर में 9 मंजिला मोहन देसिन टॉवर पर हमला किया गया, जिसमें कथित तौर पर 45 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए। ब्रिटेन द्वारा आयोजित AI शिखर सम्मेलन में बृहस्पतिवार को वार्ता का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत समेत 28 देशों के साथ हुए ब्लेचले घोषणा पत्र समझौते की सराहना की और इसे ऐतिहासिक बताया। ये घोषणा पत्र कृत्रिम मेधा से जुड़े जोखिमों से निपटने की साझा जिम्मेदारी से संबंधित है। बकिंघम शायर के ब्लेचले पार्क में 2 दिवसीय AI सुरक्षा शिविर सम्मेलन में सुनक ने पहले ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्धारकों को सूचित करने के लिए नए प्रकार के AI की जांच, मूल्यांकन और प्रशिक्षण करने के वास्ते ब्रिटेन में दुनिया का पहला AI सुरक्षा संस्थान स्थापित करने की घोषणा की थी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iJanSatta.com पर नमस्कार।